नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण समारोह में शामिल होने के लिए अयोध्या में हैं। प्रधानमंत्री ने अयोध्या पहुंचकर भव्य रोड शो किया। उन्होंने सप्त मंदिर और शेषावतार मंदिर में दर्शन किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लगभग दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री पवित्र श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर केसरिया ध्वज फहराएंगे। एक रिपोर्ट।
ध्वजारोहण कार्यक्रम प्रभु राम और माता सीता की विवाह पंचमी के दिन अभिजीत मुहूर्त में होने वाला है। ये दिन 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस को भी दर्शाता है, जिन्होंने 17वीं सदी में अयोध्या में लगातार 48 घंटों तक ध्यान किया था। आज जो धर्म ध्वजा फहराई जाएगी उसमें 10 फीट ऊंचे और 20 फीट लंबे समकोण वाले तिकोने ध्वज पर एक चमकते सूरज की तस्वीर है, जो भगवान श्री राम की प्रतिभा और वीरता का प्रतीक है। इस पर कोविदारा की तस्वीर के साथ ओम अंकित है। ये ध्वज पारंपरिक उत्तर भारतीय नगर स्थापत्य कला के अनुरूप बने शिखर पर फहराया जाएगा, जबकि मंदिर के चारों ओर बना 800 मीटर का परकोटा दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला परंपरा में डिजाइन किया गया है, जो मंदिर की स्थापत्य कला की विविधता को दर्शाता है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
प्रधानमंत्री आज शाम गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने कुरुक्षेत्र जाएंगे। इस अवसर पर श्री मोदी विशेष सिक्का और स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे। वे भगवान कृष्ण के शंख के सम्मान में बनाए गए नवनिर्मित भवन पांचजन्य का भी उद्घाटन करेंगे। कुरुक्षेत्र में 15 नवम्बर से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चल रहा है, ये 5 दिसम्बर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु तेग बहादुर जी को उनके 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आस्था और मानवता की रक्षा के लिए दी गई गुरु तेग बहादुर जी की शहादत समाज को सदैव आलोकित करती रहेगी। इथियोपिया में ज्वालामुखी विस्फोट से उठते धुएं और राख का गुबार कल रात भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों तथा पंजाब को पार कर गया है। नागरिक विमानन महानिदेशालय ने कल विमान संचालन कंपनियों और हवाई अड्डों को इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। एयर इंडिया ने अपने कुछ विमानों के हेली उबे ज्वालामुखी विस्फोट से प्रभावित क्षेत्रों के ऊपर से उड़ान भरने के बाद एहतियात के तौर पर कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी हैं। एयरलाइन ने कहा है कि वो ये सुनिश्चित करने के लिए विमानों की विस्तृत जांच कर रही है कि वे उड़ान के लिए सुरक्षित हैं या नहीं। सोशल मीडिया पोस्ट में एयर इंडिया ने कहा कि हवाई अड्डों पर उनकी टीमें यात्रियों को बदलावों के बारे में सूचित कर रही हैं और उन्हें होटल में ठहरने तथा अन्य सहायता प्रदान कर रही हैं। एयरलाइन जल्द से जल्द वैकल्पिक यात्रा की व्यवस्था करने का भी प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के 15 सदस्यों ने कल समर्पण किया। इन पर लगभग 50 लाख रुपए का इनाम था। इनमें 10 पुरुष और 5 महिलाएं शामिल हैं। इनमें कुख्यात पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के 4 सदस्य भी शामिल हैं। इस समूह ने सुकमा जिला पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधीक्षक किरण चौहान के समक्ष समर्पण किया। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दूसरे चरण की शुरुआत के बाद से 99% से ज्यादा गणना प्रपत्र मतदाताओं के बीच वितरित किए जा चुके हैं। अब तक 50 करोड़ 50 लाख से अधिक गणना प्रपत्र वितरित किए गए हैं। SIR का दूसरा चरण 4 नवंबर को 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हुआ था। घरेलू शेयर बाजार का संविदी सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी के शुरुआती कारोबार में बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 107 अंक की बढ़त के साथ 85,008 पर, जबकि निफ्टी 38.3 अंक की वृद्धि के साथ 26,000 पर कारोबार कर रहा था। उत्तराखंड के चमोली जिले में पवित्र बद्रीनाथ मंदिर के कपाट आज दोपहर 2:56 पर सर्दियों के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही इस वर्ष की चारधाम यात्रा का औपचारिक समापन हो जाएगा। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने ढाका में चीनी ताइपे को 35-28 से हराकर लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप का खिताब जीत लिया है। भारत ने ग्रुप चरण के सभी 4 मैचों में जीत हासिल की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।